Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai, Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai, Shri Shri Gaurnatai Ki Jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai, Shri Shri Jagannath Rath Yatra Mahotsav Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Adhyana Pilarandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Yodhikam Yena Tatmai Shri Guru Vrinda. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महीं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणे प्रचारिणे विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवविषये नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज वैसे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री शिवानंद सेन का तिरुभाग दिवस है और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव भी इसी दिवस पर मनाया जाता है। तीनों विषय के ऊपर चर्चा करना मुश्किल है, इसलिए आज सुबह केवल हम जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे ये उत्सव बहुत प्राचीन है, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है ऐसे कहा जाता है कि ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा देवी साथ साथ में सुदर्शन चक्रधु रथ के ऊपर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहां पर वो 8 या 9 दिन रहते हैं और फिर उल्टा रथ होता है जिसे बहुधा रथ कहते हैं। और इस उल्टा रथ के समय वो पुनः गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। कई उत्सव जगन्नाथ मंदिर में मनाए जाते हैं, उनमें से ऐसे 12 उत्सव प्रमुख कहलाते हैं और उनमें से स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, हीरा पंचमी ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्नान यात्रा के दिन पर, जो कि 15 दिन पहले हो चुका, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा तीनों विग्रहों का स्नान किया जाता है वेदी के ऊपर लाकर और सभी लोग दर्शन कर सकते हैं उस समय। और शीतल जल से सुंदर ढंग से जब स्नान किया जाता है, जैसे कि महाराज इंद्रदुम्न ने उस समय किया था प्राण प्रतिष्ठा के समय ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान को थोड़ा बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है इतने शीतल जल से अचानक स्नान करने के बाद। और फिर भगवान 15 दिन बुखार से ठीक होने के लिए एकांत स्थान में रहते हैं, 15 दिन बाहर नहीं आते हैं। इस 15 दिन के अवधि को अनवसर कहते हैं, भगवान इस समय दर्शन नहीं देते हैं, वो सुखी रस का स्वादन करते हैं लक्ष्मी देवी के साथ में। और इस समय जो शबर विश्ववासु, जो कि प्राचीन काल में दीन माधव की सेवा किया करते थे, उनके जो वंशज हैं जिनको दयिता कहते हैं, वो लोग इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। जो ब्राह्मण पुजारी हैं वो भी इस समय जगन्नाथ की सेवा नहीं कर सकते, ये वो दैत्य लोग सेवा करते हैं। और विशेष करके उनको ऐसे कोई फलाहार आदि दिया जाता है ताकि जल्दी से, और औषधियां भी दी जाती हैं जिनसे कि जल्दी से जल्दी इनका बुखार जल्दी जो है वो सब ठीक ठाक हो जाए। तो ये भगवान की लीला है। 15 दिन जब भगवान दर्शन नहीं देते तो सारे भक्त लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं और बड़े आतुरता से नेत्रोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। अनवसर में जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बड़े विचलित होकर वो अलगनाथ चले जाते थे। अलगनाथ में वहां भगवान अलवर नाथ की एक मूर्ति है जो नारायण स्वरूप है। आप तो जानते हैं कि दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय में बहुत बड़े महान भक्त हुए जिनको अलवर कहते हैं, ऐसे 12 अलवर हुए हैं। तो कोई ऐसे एक श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त यहाँ पर आए थे नीलाचल प्रांत में और उन्होंने यहाँ अलवर नाथ विष्णु की मूर्ति की सेवा शुरू की थी। वैसे ये स्थान तो बहुत प्राचीन है, ब्रह्मगिरी कहलाता है। तो खैर यहाँ चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे और जब वो अलवर नाथ का दर्शन करते थे तो भगवान के विष्णु, भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप नहीं देखते थे, वो तो साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण जो कि वृंदावन में निवास करते हैं उनका दर्शन करते थे। और बड़े भाव विभोर होकर वृंदावन के निवासियों का वैर का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते, कीर्तन करते, प्रणाम करते। और आज भी अलवर अलारनाथ मंदिर में एक ऐसे शिला है जिसमें ऐसे कहा जाता है कि जब महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया था और उनके भाव के प्रभाव से भार से वो पिघल गया, वो शिला जो है वो पिघल गई और वो चिन्ह जो है आज तक दिखाई पड़ता है। तो ऐसे 2 हफ्ते महाप्रभु अलारनाथ में रहकर फिर यहाँ नव यौवनम दिवस पर लौट के आते हैं। नव यौवन दिवस कहते हैं जो रथ यात्रा के पहले का दिवस होता है जिसमें भगवान को एक नया युग अवस्था का श्रेय दिया जाता है। आप तो जानते हैं कि जगन्नाथ दारू ब्रह्म है। दारू मतलब लकड़ी, विशेष लकड़ी से बनाया हुआ भगवान का स्वरूप होता है और बलराम और सुभद्रा देवी भी। तो ऐसे ये जो अनुवसर का समय होता है उस समय भगवान को नया रंग दिया जाता है और रंग देने के बाद पहली बार फिर रथ यात्रा के पहले दिवस जिसको नव यौवन दिवस कहा जाता है वहां भगवान दर्शन देते हैं और इस समय ये नेत्रोत्सव मनाया जाता है जबकि सारे भक्त भगवान का दर्शन कर सकते हैं। 15 दिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाए इसलिए सारे भक्त बड़ी संख्या में आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, विशेष करके नेत्रोत्सव में शामिल होते हैं। तो नव यौवन इसलिए कहा जाता है कि भगवान के शरीर में जो रंग लगाया जाता है वो ताजा होता है, भगवान बड़े चमकते हैं, बहुत तेज होता है उनके शरीर पर। तो चैतन्य महाप्रभु भी नेत्रोत्सव के नेत्रोत्सव में शामिल हुए थे और बड़े आतुरता से वहां आए। महाप्रभु के मन में ग्रह की भावना बहुत तीव्र थी और पहले तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु पीछे गरुड़ स्तंभ के पास में खड़े होकर वो दर्शन किया करते थे। आप में से जो भक्त जगन्नाथ मंदिर में गए हैं आपने देखा होगा कि पीछे जगमोहन के अंत में एक खंभा है जिसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं। वैष्णव मंदिरों में वैसे प्रथा है कि या तो गरुड़ होने चाहिए या हनुमान जी होने चाहिए, ऐसे जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं उनकी मूर्ति भी होती है। मायापुर चंद्रोदय इस्कॉन मंदिर में आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर गरुड़ देव हैं, तो यहाँ पर भी गरुड़ स्तंभ है। तो चैतन्य महाप्रभु अक्सर वहां खड़े होकर दर्शन किया करते थे, और जिस स्थान में महाप्रभु खड़े हो जाते थे वहां से केवल उनको जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता था, बलदेव और सुभद्रा देवी का दर्शन नहीं मिल पाता था उस स्थान से। लेकिन और वहां खड़े होकर वो जगन्नाथ का दर्शन करते, और जगन्नाथ नहीं उनको तो श्याम सुंदर कृष्ण दिखाई पड़ते जो कि बांसुरी बजाया करते थे, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। लेकिन इस दिवस पर, नव यौवन दिवस पर, नेत्रोत्सव के समय चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त सीधे भोग मंडप में चले आए। भोग मंडप मतलब जहां भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, मतलब बिल्कुल सामने से, बिल्कुल जगन्नाथ के सामने। ऐसे एक विधि है कि भगवान का दर्शन जो है, भगवान के विग्रहों का दर्शन थोड़े दूरी से करना, दूर से करना चाहिए, एकदम पास में जाके नहीं करना चाहिए। इससे अपराध होने की संभावना नहीं होती, अगर पास में बहुत चले जाते हैं तो अपराध होने की संभावना होती है, तो एक विधि है। तो लेकिन इस दिवस पर भक्त लोग इतने उत्साहित है भगवान का दर्शन करने के लिए कि सारे भक्त जो है भोग मंडप में चले गए। भगवान का दर्शन बहुत समीप से, बहुत करीब से उन्होंने कर लिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु बाहर आए जब भोग का समय हो गया, और फिर बहुत कीर्तन करना उन्होंने शुरू कर दिया। गुंडीचा महाजन का दिवस भी कल था, इसके बारे में कल आपने सुना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे कि कल रथ यात्रा का महोत्सव है, तो प्रातः काल में जल्दी उठ के अपने कार्य समाप्त करके जब वो मंदिर आए, फिर पांडु विजय उत्सव हुआ जिसे पहंडी भी कहते हैं। इस उत्सव में तीनों विग्रहों को सिंहासन से उठाकर रथ में बिठाया जाता है, और ये काफी दूर होता है क्योंकि रथ तो सड़क पे होते हैं, और भगवान का सिंहासन तो भीतर मंदिर में अंदर होता है, गर्भगृह में। और भगवान के विग्रह हैं काफी भारी होते हैं, और दो पांच दस आदमी उठा नहीं सकते, तो रेशम की डोरियों से भगवान के कमर बांधे जाते हैं और फिर उनसे उठाया जाता है। और ये गरीब लोग हैं जो बहुत खट्टे खट्टे होते हैं, वो भगवान को उठाते हैं, और तकिए होते हैं, तकियों के ऊपर एक बीच बीच में रख देते हैं क्योंकि इतना उठाना भी संभव नहीं होता, फिर बीच में रख के फिर उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर उठाते हैं। और ऐसे सारे लोग, सारे भक्त वहां इकट्ठे होते हैं, जय जयकार करते हैं भगवान का। जगन्नाथ साल भर मंदिर के अंदर ही रहते हैं, और केवल रथ यात्रा के समय अब वो बाहर चले आते हैं सैर करने के लिए। अब देखिए, हम लोग भी साल भर एक ही कमरे में बैठे रहे हैं, तो अच्छा हमें इच्छा नहीं होगी कि हम भी बाहर जाएं, कुछ सैर करने जाएं? तो भगवान की भी इच्छा होती है। भगवान सोचते हैं कि ठीक है, मैं साल भर यहां रहा, लेकिन अब मुझे बाहर जाना चाहिए, सैर करने की इच्छा हो रही है मुझे, तो सैर करने भगवान जाते हैं। इसके पीछे और भी एक गोपनीय या एक रहस्य है, कारण है, जिसकी चर्चा संक्षेप में थोड़ी देर बाद में करेंगे। परंतु बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, भगवान जगन्नाथ सैर करने के लिए जाना चाहते हैं, साथ साथ अनेक लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाना चाहते हैं, और विशेष करके जो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, जिनके लिए मना है रथ यात्रा में, तो सभी लोग कर सकते हैं। ऐसी प्रथा आज भी चल रही है, सही हो या गलत तो दूसरी बात है, लेकिन अब भी चल रही है कि जो विदेशी भक्त होते हैं उनको अंदर जाना मना होता है, लेकिन जब जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा के समय बाहर जाते हैं तो सभी लोग विदेशी देशी सभी लोग दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो भगवान जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं, सबको कृपा देने के लिए वो बाहर चले आते हैं। पांडु विजय का उत्सव हो जाता है और भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा तीन रथों के ऊपर सवार हो जाते हैं और जोर जोर से भक्त लोग कीर्तन करते हैं। और पहले तो नीलाचल के जो राजा होते हैं, पुरी के राजा, वो आते हैं और वो रथ के सामने जो सड़क होता है, सड़क के ऊपर झाड़ू लगाते हैं सड़क साफ करने के लिए। और ये प्रथा अनेक वर्षों से चलती आ रही है, इंद्रद्युम्न महाराज के समय से। एक बड़ा सौभाग्य है राजा को यह सुअवसर प्राप्त होता है कि वो जगन्नाथ की सेवा इस प्रकार से करे। और इससे ये साबित हो सकता है कि होता है कि चाहे व्यक्ति बड़े से बड़ा आदमी भी क्यों न हो जगत में, परंतु भगवान के सामने वो तो केवल दास ही होता है। और चाहे वो राजा भी क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो साधारण भक्तों को भी इसे सीखना चाहिए कि कैसे हमें भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। वैसे जितने भी भक्त होते हैं, जो अनुभवी भक्त हैं या जो प्रथा को जानते हैं, जो भक्ति पथ को समझते हैं, वो राजा को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि चलो राजा जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं इस प्रकार की। और ये प्रथा इतनी सुदृढ़ है कि कोई उसे बदल नहीं पाया है। अभी जो पुरी के राजा हैं, उनके वैसे कोई उनका पद वैसे तो कुछ है नहीं और सरकार ने उनका राज्य तो ले लिया है, उनका राज्य तो उनके पास है नहीं, परंतु वो कह रहे थे कि सरकार ने मैंने सब कुछ ले लिया लेकिन जगन्नाथ जी की ये जो सेवा है वो नहीं ले पाई, क्योंकि ये तो जगन्नाथ जी ने स्वयं मुझे दी है, ये सेवा तो हमेशा मैं करूंगा जब तक मैं हूँ, उसके बाद जो उनके वंश में आने वाले राजा हैं वो सब करेंगे। लेकिन ऐसे कोई लोग होते हैं जो भक्ति पथ को समझते नहीं है, वो इस उत्सव को या इस प्रथा को समझते नहीं है ठीक से। मुझे याद है दूसरे जगह में जब हम गए थे, बाहर रथ यात्रा का समय था और वहाँ कोई कमेटी के लोग थे, वहाँ के भक्तों ने एक कमेटी बनाई थी जो प्रतिष्ठित नागरिकों की कमेटी, ऐसे अक्सर हमारे मंदिरों में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए ऐसे कमेटी बनाई जाती है। प्रतिष्ठित लोग आते हैं, फिर आशा करते हैं भक्तों की वो भी कुछ दान भी करेंगे, क्योंकि रथ यात्रा उत्सव में खर्चे भी बहुत होते हैं और न केवल रथ के लिए, फिर बाद में हजारों लोगों को प्रसाद बांटते हैं, पंडाल के ऊपर कार्यक्रम होता है, खर्चा काफी हो जाता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो कमेटी के लोग आके कुछ दान आदि करते हैं। तो जब हमने सुझाव रखा था, उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी को बुलाया जाए, एक मंत्री को बुलाया जाए, ठीक है। तो ये झाड़ू है ना आपके पास, तो सड़क साफ करने के लिए, वो आप जिलाधिकारी और मंत्री महोदय को आप दे सकते हैं। तो अरे उनको उनसे झाड़ू लगाएंगे, अरे वो तो नाराज हो जाएंगे, वो अपमानित हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो अपमान होने की बात नहीं है, ये तो सम्मानित होने की बात है कि उनको ऐसे सौभाग्य मिल रहा है कि जो पुरी के राजा किया करते थे, भगवान के जो विशेष भक्त हैं जो किया करते थे, वो अभी अवसर इनको मिल रहा है। फिर भी उनके मन में जो भाव ठीक नहीं रहा। तो जो भक्ति के पथ में है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कई साल पहले जब पुरुषोत्तम देव राजा थे नीलाचल के, ऐसी घटना हुई। पुरुषोत्तम देव का विवाह एक दक्षिण भारत के राजा से होना था। उस राजा का नाम था सलोवर नरसिम्हा और दक्षिण भारत के एक प्रांत के वो राजा थे। और विवाह के पहले ये विवाह तय हो चुका था, लेकिन विवाह हुआ नहीं था अभी तक। और रथ यात्रा का दिवस आया तो राजा पुरुषोत्तम देव ने निमंत्रण भेजा राजा सलोवर नरसिम्ह को कि आप भी आइए, रथ यात्रा का महोत्सव है तो आप भी एक उत्सव में शामिल हुई। राजा किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने मंत्री को भेज दिया कि आप मेरा प्रतिनिधित्व कीजिए और इस उत्सव में शामिल होकर वापस आ जाइए, मुझे रिपोर्ट दीजिए कि उत्सव कैसे हुआ। तो जब मंत्री वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव जो हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं सड़क कर भगवान जगन्नाथ के सामने। तो वो इतने साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं थे, कुछ अनुभवी नहीं थे, उनको ज्यादा ज्ञान भी नहीं था जगन्नाथ के बारे में न भक्ति के बारे में। तो वापस जाकर उन्होंने रिपोर्ट दिया कि वहां के राजा तो झाड़ू लगाते हैं सड़क के ऊपर और सारे उत्सव में वो ऐसे सामने आते, सबके सामने वो आते झाड़ू लगा रहे थे जगन्नाथ के रथ के सामने। तो राजा सलू नरसिंह ने कहा कि ये विवाह तो नहीं हो सकता, मेरे पुत्री का विवाह कोई झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से मैं करूंगा क्या, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर विवाह उन्होंने खंडित कर दिया, नहीं अभी विवाह नहीं हो सकता। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा क्रोध आया, क्रोध केवल अहंकार के लिए नहीं कि अरे मेरा प्रस्ताव उन्होंने अब स्वीकार नहीं किया, इस बात से नहीं, उनको लगा कि ये तो जगन्नाथ के प्रति एक अपमान हो गया है और इसलिए वो निकल पड़े अपने सेना के को साथ में लेकर। राजा सलू नरसिंह के साथ भीषण युद्ध हुआ लेकिन वो हार गए और राजा पुरुषोत्तम देव बहुत ही निराश होकर लौट के चले आए। अब लौटते समय वो एक विश्राम के लिए एक स्थान में रुके थे, एक भक्त थे, गृहस्थ थे लेकिन बहुत ही वैरागी थे और उस भक्त ने देखा कि राजा बड़े निराश हैं क्योंकि वो युद्ध में हार गए हैं। तो उन्होंने समझाया कि शायद आपने ये भूल की कि आपने जगन्नाथ देव की अनुमति नहीं मांगी, उनके आशीर्वाद नहीं मांगा आपने, आप सीधे चले गए युद्ध करने के लिए। तो इस युद्ध के लिए निकलने के पहले आपका कर्तव्य था कि आप जगन्नाथ जी से अनुमति ले लें कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, आपकी अनुमति आपकी कृपा दीजिए, इसलिए आप हार गए। तो राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत बुरा लगा तो लौट कर आए, सीधे मंदिर में चले गए और मंदिर में गर्भगृह के सामने आके दरवाजे के पीछे वहीं पर जगन्नाथ के सामने रोने लगे और रात भर वहीं रहे और प्रार्थना करने लगे। और फिर स्वयं जगन्नाथ ने उनको प्रेरणा दी कि कोई चिंता नहीं, हम दोनों भाई मतलब जगन्नाथ और बलभद्र हम दोनों आएंगे तुम्हारी सेना से, तुम्हारे सेना में हम साथ देंगे, हम शामिल हो जाएंगे और हम युद्ध करेंगे, क्यों डरते हो, इतनी छोटी सी बात पे क्यों इतने निराश हो गए, तो चलो दोबारा चलो। तो जब राजा बाहर आए तो बात तो फैल गई सब जगह कि ऐसे जगन्नाथ और बलदेव दोनों युद्ध करने वाले हैं राजा पुरुषोत्तम देव की सेना में। तो जितने भी जवान लोग थे, बूढ़े लोग थे, सभी लोग सेना में शामिल हो गए, सभी लोग आ गए, चलो चलते हैं राजा के साथ में। राजा चल तो पड़े लेकिन मन में संशय था कि जगन्नाथ बलदेव वास्तव में जाएंगे क्या, कह तो दिया उन्होंने लेकिन युद्ध करने आएंगे वो साथ में। तो फिर चलते चलते वो आगे गए, उधर हुआ ये कि वास्तव में जगन्नाथ देव और बलभद्र वास्तव में एक सफेद घोड़े पे काले घोड़े पे बैठकर चले गए थे आगे एडवांस पार्टी। और आगे चलते चलते चिलिखा सरोवर के पास में उनको प्यास लगा और भूख लगी, तो वहां एक महिला थी जो दही बेच रही थी और छाछ, तो दही और छाछ उस महिला से उन्होंने खरीद लिया और अच्छी तरह से पी लिया खा लिया। और जब उस महिला ने रकम मांगी तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है लेकिन कोई चिंता नहीं है, पीछे राजा पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं उनसे पैसा ले लेना। लेकिन वो कैसे, वो कहेंगे कि हम जानते नहीं इनको ये कौन है और वो पैसे देने से इनकार किया, तो नहीं कोई बात नहीं, ये अंगूठी है, ये अंगूठी रख लो और राजा को दे दो, कहो कि आपके दो सैनिक आए थे और ये सैनिक जो है इन्होंने ये अंगूठी दे दी, तो आप कृपया ये पैसे दे दीजिए। तो उस महिला का नाम था मणिका, बुरी औरत थी। तो जब राजा पुरुषोत्तम देव वहां पर आए अपनी सेना को लेकर, तो मणिका देवी ने उनको रोका, रुके रुके रुके, क्या बात है, कोई प्रजा है, कोई महिला है, राजा से कुछ कहना चाहती है, तो रुक गए। आजकल अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या कोई मंत्री आज सड़क में जा रहा है, वो रोकेंगे तो गिरफ्तार करके उनको कोई अंदर डाल देंगे, ये सोचेंगे कि कोई सुरक्षा के लिए कोई खतरा है, कुछ है। लेकिन पहले राजा जो है वो प्रजा से बहुत करीब रहा करते थे, प्रजा की बात सुनते थे। तो फिर महिला से पूछा कि क्या परेशानी है बताओ। कहा कि देखो, आपके दो सैनिक यहाँ आए थे, एक काले घोड़े पर बैठकर दूसरे सफेद घोड़े पर बैठकर आए थे, मेरे से छाछ और दही वगैरह खरीद के चले गए, और उन्होंने ये अंगूठी मुझे दे दी और कहा कि राजा जब आएंगे उनको दे देना और उनसे पैसे ले लेना। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कौन दो सैनिक आए यहाँ पर। तो फिर उन्होंने अंगूठी देखी और देखा कि जगन्नाथ जी के रत्न मुद्रिका है, भगवान जगन्नाथ की अंगूठी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको पता चला कि हाँ, वास्तव में जगन्नाथ बलदेव आए हैं और एडवांस पार्टी में आगे गए हैं, आगे युद्ध करने के लिए गए हैं। और उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और छाप और दूध की रकम की बात तो दूर है, उन्होंने सारा गांव दे दिया इस महिला को। और आज भी एक गांव है जिसे मणिकापट्टनम कहते हैं। और फिर बड़े उत्साह से राजा पुरुषोत्तम देव आगे चल पड़े और बहुत भीषण युद्ध हुआ और इसमें वो जीत गए। और काले सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर भी दो युद्ध कर रहे थे, कोई सैनिक थे और सबकी शत्रुओं का नाश कर रहे थे। तो राजा जीत कर चले आए, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने राजा सर्व नरसिंह की पुत्री जो थी, जिनका नाम था पद्मावती नाम था, का अपहरण करके लेकर आए, जिनसे शादी होनी थी उनकी, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी, तो उनका अपहरण करके लेकर आए। और जब जगन्नाथ रथ पुरी में पहुंचे तो राजा पुरुषोत्तम देव ने अपने मंत्री से कहा, अब विवाह करा दो इसका, कोई झाड़ू मारने वाले से करा दो इसका विवाह। तो मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने वाल्मीकि मुनि की तरह ही पद्मावती देवी को एक सुरक्षित स्थान में रख दिया। और अगले साल जब रथ यात्रा का समय आया और जब राजा पुरुषोत्तम देव फिर से झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के सामने आए रथ सड़क को साफ करने के लिए, तो बड़े बुद्धिमान थे वो मंत्री, उस समय पद्मावती देवी को साथ में लेकर आए और कहा कि हाँ, आपने कहा था ना एक झाड़ू मारने वाले व्यक्ति को इसका विवाह करा दो, तो ये है, अब मैं सौंप रहा हूँ विवाह में। तो राजा पुरुषोत्तम देव भी बड़े प्रसन्न हुए और विवाह हो गया। तो खैर, ये छोटी सी कथा है कि रथ यात्रा के साथ साथ भी ऐसे कई चीजें होती हैं जो बहुत महत्व की होती हैं। और इस प्रकार से रथ यात्रा फिर शुरू हो जाता है जब राजा सड़क साफ कर लेते हैं और भक्त लोग बड़े धूमधाम से कीर्तन करते हैं। और ये 2 किलोमीटर का रास्ता, 1 मील का रास्ता है जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक। जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहां पर आए पहली बार संन्यास लेने के बाद, जब वहां पर वो रुके तो बड़े विस्तार में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु देखने लगे, दर्शन करने लगे, जब से नेत्र उत्सव था तब से ही भगवान जगन्नाथ को देखते देखते भाव विभोर हो जाते। अपने कमल नयन से चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ का सुंदर रूप का पान करते। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की आंखें 2 भंवरों के समान थी। और भंवरे आप जानते हो, हमेशा शहद के पास समय शहद के करीबी रहते हैं, शहद बनाते हैं, शहद का पान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की दो आंखें जो भंवरों के समान थी, वो जगन्नाथ भगवान के दो नेत्र, नेत्रों से जो शहद आ रहा था, जो मधु आ रहा था, उसका पान कर रही थी। दूसरे शब्दों में बहुत ही प्रेम पूर्वक वो दर्शन कर रहे थे भगवान का, कृष्ण कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। लेकिन दर्शन करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के भाव में है, और दर्शन देने वाले हैं जगन्नाथ जो कृष्ण है, स्वयं भगवान, भगवान के रूप में ही है वो। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को कीर्तन दलों में विभाजित किया। उन्होंने चार दल बनाए, प्रमुख दल, जिनमें से नृत्य करने वालों को उन्होंने चुन लिया, जैसे कि नित्यानंद प्रभु है, हरिदास ठाकुर है, अद्वैत आचार्य है, बक्रेश्वर पंडित है। इन चारों को कहा कि आप इस चार दलों में जाइए और आप नृत्य कीजिए एक एक दल में। साथ साथ उन्होंने अन्य भक्तों से भी कहा कि एक एक दल में जाके आप कीर्तन करना है, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जिनका तिरुभाव दिवस आज है, फिर शिवा ठाकुर, गोविंद घोष इत्यादि। और हर एक दल में दो मृदंग बजाने वाले, और उस समय आप जानते हैं कि कोई लाउड स्पीकर माइक्रोफोन तो कुछ हुआ नहीं करते थे। आजकल जितने भी रथ यात्रा होते हैं वहाँ बड़े अच्छे अच्छे आधुनिक माइक्रोफोन लाउड स्पीकर होते हैं, और लेकिन उस समय तो ऐसे नहीं थे, इसलिए बहुत सारे कीर्तन पार्टी हुआ करते थे। तो इन चार कीर्तन पार्टियों को चैतन्य महाप्रभु ने रथ भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने कीर्तन करने के लिए कह दिया। और अन्य गांव से, बंगाल की जगह जगह से भी भक्त लोग आए थे। कोई श्रीखंड से आए, कोई शांतिपुर से आए, कोई इधर से आए, उधर से आए। तो सारे लोग बड़े धुआंधार कीर्तन करने में लग गए। तो चार कीर्तन के दल सामने, दो आसपास में और एक पीछे, इस प्रकार के सात दल थे जगन्नाथ जी के रथ के आगे और पीछे। और जितने भी भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, उनको लगता कि चैतन्य महाप्रभु केवल हमारे दल में ही है। जैसे रासलीला के समय सारे गोपियों को लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, या जिस समय जब ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर बैठकर भोजन ग्रहण किया करते थे, तो हर एक ग्वाल बाल को लगता था कि श्री कृष्ण मुझे ही देख रहा है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वास्तव में सातों दलों में घूम घूम के कीर्तन कर रहे थे। अब दूर से महाराज प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य इस दृश्य को देख रहे थे। रथ यात्रा के पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य तो पहले कट्टर मायावादी थे, भगवान को निराकार मानते थे, और भगवान के निराकार स्वरूप में लीन होना इसी जीवन का ध्येय मानते थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने पर वो भी भक्त बन गए और समझ गए कि कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है। तो महाराज प्रताप रुद्र ने देखा ये कीर्तन और बहुत ही विस्मित हो गए, और वो कहने लगे कि मैंने आज तक कभी जीवन में ऐसा कीर्तन नहीं देखा है, इतना मधुर कीर्तन, और इस ढंग से ये कीर्तन भी मैंने सुना नहीं है, और साथ साथ ऐसा नृत्य भी मैंने कभी देखा नहीं है, और ऐसे जो भक्ति के भाव प्रकट किए जा रहे हैं भक्तों के द्वारा, ऐसे भावों को भी मैंने कभी देखा नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य समझाने लगे महाराज को कि हाँ, ये जो प्रेम का प्रकट्य है, ये जो भाव का प्राकृत्य है, ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु की निर्मिति है, इसे प्रेम संकीर्तन कहते हैं। वास्तव में कलयुग में यही नाम संकीर्तन युग धर्म है। और सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र को काफी प्रचार किया नाम संकीर्तन के बारे में। महाराज प्रताप रुद्र बहुत प्रभावित हुए, वो काफी समय से दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने मना किया था। अंततः महाराज के छोटे बच्चे को आगे ले गया गया था। ऐसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति का बच्चा जो होता है वो उसका एक समझ लीजिए विस्तारित स्वरूप होता है। तो अगर हम पिता से नहीं मिल सकते तो बच्चे से मिलकर ऐसे कह सकते कि हम पिता को मिले, कि बच्चा जो होता है वो पिता का ही स्वरूप होता है। तो राजकुमार को दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन राजा को नहीं। तो खैर बाद में रथ यात्रा विभागी चली गई तो भक्तों के योजना से, भक्तों की कृपा से महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला, लेकिन वो कथा तो बहुत लंबी है। तो खैर इस प्रकार से भक्त लोग कीर्तन करते रहे और रथ आगे चलता गया और अनेक भावुक लोग सामने आए, भक्त लोग आए, वो रथ खींच रहे थे। लेकिन केवल भक्तों के खींचने से रथ नहीं चलता, स्वयं भगवान जगन्नाथ कभी जब रुकना चाहते तो रथ रुक जाता और जितना भी क्यों न खींचे भक्त लोग रथ हिलता नहीं और भक्त समझ जाते कि जगन्नाथ जी अब रुकना चाहते हैं। और भगवान क्यों रुकते, वो भक्तों का कीर्तन और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन देखना करना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जगन्नाथ के सामने कीर्तन करते, कभी कभी उनके पीछे चले जाते। और जब पीछे चले जाते तो जगन्नाथ जी रुक जाते क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे। वैसे जगन्नाथ जी कौन है, ये तो श्री कृष्ण है, परंतु उनका विशेष रूप का तात्पर्य या महत्व क्या है? ये विशेष रूप एक विरह का रूप है। जब श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो उनको वृंदावन की बहुत याद आती थी और उन्होंने ये महाभाव स्वरूप, ये महाभाव प्रकाश स्वीकार किया। तो जगन्नाथ का ये रूप जिसमें उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं और उनके हाथ और पैर जो है शरीर के अंदर चले गए हैं, ये एक महाभाव का स्वरूप है जिसमें वो अति तीव्र विरह की भावना का अनुभव कर रहे हैं वृंदावन से और विशेष करके श्रीमती राधा रानी से। तो ये कृष्ण का स्वरूप, जबकि वो तीव्रता से श्रीमती राधा रानी का विरह का अनुभव कर रहे हैं, वो है जगन्नाथ। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, परंतु राधा भाव द्विति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण का स्वरूप तो है परंतु राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण हैं, फिर भी श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में एक विशेष लीला हुआ करती थी। और जब चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते थे रथ के, तो जगन्नाथ जी खड़े हो जाते थे वहां पर। जब तक चैतन्य महाप्रभु सामने नहीं आते, जगन्नाथ खेलते नहीं। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का हमेशा विजय होता जगन्नाथ के ऊपर। दूसरे शब्दों में अगर कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की चर्चा की जाए तो हालांकि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान कहलाते हैं और ये सही भी है, परंतु श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के वश में होते हैं। और ये इस रथ यात्रा के इस लीला से सिद्ध हो जाता है। कभी कभी जगन्नाथ रुक जाते थे केवल इस कीर्तन को देखने के लिए। तो इस प्रकार से रथ यात्रा आगे चलता रहा और गुंडीचा पहुंच गया। कभी कभी ऐसे होता है कि जब जगन्नाथ देव बीच रास्ते में विश्राम करना चाहते हैं तो वही रुक जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं है उस दिन, और फिर रात भर रथ वहीं खड़े रहता है सड़क के ऊपर, और अगले दिन फिर सुबह को रथ यात्रा फिर से शुरू हो जाती है और फिर गुंडीचा मंदिर रथ पहुंच जाते हैं। तो खैर रथ चलता गया और जब जगन्नाथ कभी बीच में रुक जाते तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां पास में जो बगीचे हैं वो बगीचों में चले जाते थोड़ा विश्राम करने के लिए। ऐसे ही एक समय जब रथ यात्रा हुआ था तो महाराज प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। तो गुंडीचा मंदिर ये वास्तव में वृंदावन का प्रतीक है और जगन्नाथ मंदिर ये द्वारका या कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, विशेष करके द्वारका। आप तो जानते हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण एक राजा के समान है, वहां पर भगवान की ऐश्वर्य लीला होती है और जगन्नाथ मंदिर में भगवान को बड़े ऐश्वर्य भाव से सेवा किया जाता है। वैकुंठ भाव है वहां पर, वहां कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है। परंतु गुंडीचा में वृंदावन का भाव होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय एक बार जब द्वारका के निवासी कुरुक्षेत्र गए थे स्नान करने के लिए, क्योंकि ऐसी प्रथा होती है, ऐसी विधि होती है, तो उस समय वृंदावन के निवासी भी वहां गए थे। तो ब्रजवासियों को पता चला कि श्री कृष्ण द्वारका से यहाँ आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को देखने के लिए आ गए। लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ थोड़े निराश भी हो गए। निराश होने का कारण क्या था? कारण ये था कि अब जिस कृष्ण को वो सामने देख रहे थे वो कृष्ण एक राजा के वेश में थे और सोने का किरीट और साथ में नौकर चाकर, साथ में सेना, और वो रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत ठाट था वहां, राजा का स्वरूप था। लेकिन ब्रजवासियों को ये रूप पसंद नहीं आया। ब्रजवासी चाहते थे उस कृष्ण को देखने के लिए जिनको उन्होंने वृंदावन में देखा था, वृंदावन के कृष्ण को देखना चाहते थे, जो केवल एक ग्वालपाल है, जो बांसुरी बजाते हैं, जो ग्वालपालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गौओं को चराते हैं, जो गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं। यहां वृंदावन के कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। तो फिर ब्रजवासियों ने कृष्ण को आगे बढ़ने नहीं दिया। कभी कभी देखा जाता है कि छोटे गांव का आदमी विदेश चले जाता है और लौट के आता है तो सूट बूट पहनकर कंप्यूटर वंप्यूटर लेके साथ में आता है, मोबाइल फोन लेके अपने छोटे से गांव में, और गांव लोग कहते हैं अरे ये कहां से, ये तो हमारे गांव वाला आदमी था, अब लौट के आया तो विदेश से आया, अब अंग्रेजी में बात करता है और कंप्यूटर सब लेकर आता है, अच्छा नहीं लगता उनको, भाई हमारे गांव के हो, गांव वालों की तरह रहो। तो उसी प्रकार से ब्रजवासियों को भी लगा अब ये चलेगा विदेश, राजा वहां बन गए मथुरा और द्वारका में, अब अच्छा नहीं लगता, हम गांव वालों की तरह रहना चाहिए कृष्ण को। तो जब कृष्ण रथ में बैठे द्वारका जाने के लिए तो सारे ब्रजवासियों ने उनको रोका और कहा कि नहीं, आपको अब लौटना चाहिए वृंदावन, हम आपको वृंदावन ले जाएंगे। तो वो रथ को खींचने लगे वृंदावन की ओर। तो ये जो रथ यात्रा उत्सव होता है यही इसका गुह्य या रहस्यमय तात्पर्य है कि जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, और रथ यात्रा में जब भक्त लोग रथ खींचते हैं तो वो कह रहे हैं जगन्नाथ जी से कि हम आपको द्वारका से वृंदावन ले जा रहे हैं, आप वृंदावन आइए। तो ये भाव है रथ यात्रा के समय। और फिर जगन्नाथ भगवान वह रह जाते हैं 8 दिन और फिर से उल्टा रथ होता है और जगन्नाथ लौट के चले जाते हैं। और फिर जब अनवसर के समय 15 दिन लक्ष्मी देवी के साथ स्वकीय रथ का स्वाद लेकर निकल आते हैं भगवान रथ यात्रा के लिए, तो लक्ष्मी देवी पूछती है कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी 2 दिन में लौट के आऊंगा, कोई काम से जा रहा हूं और आऊंगा अवश्य 2 दिन के बाद में। तो 2 दिन तो हो जाते हैं और रथ यात्रा के बाद भगवान आते नहीं है। फिर लक्ष्मी देवी बड़ी चिंतित हो जाती है और फिर गुस्सा आने लगता है उनको। और पांचवें दिन एक महोत्सव होता है, छठे दिन महोत्सव एक महोत्सव होता है हेरा पंचमी। ये हेरा पंचमी का उत्सव बहुत सुंदर है और लक्ष्मी देवी अपने दासियों को भेजती हैं, जाओ जगन्नाथ जी के सेवकों को गिरफ्तार करो और उनको दंड दो, उनको कहो कि मेरे स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं, उनको आना चाहिए था। अब वहां राधा रानी के वृंदावन में जाके बैठे हैं, वहां पर क्या है, वहां केवल कंद मूल जड़ी बूटियां हैं बस, और यहाँ मैं ऐश्वर्यशाली सेवा करना चाहती हूँ, वैकुंठ यहाँ है और वैकुंठ को छोड़कर थोड़े बगीचों के लिए वहां पर चले गए। तो ये भाव हेरा पंचमी का है। चैतन्य महाप्रभु ने इस उत्सव का भी दर्शन किया और प्रभुपाद जी की कृपा से अब ये रथ यात्रा का महोत्सव दुनिया के सारे महत्वपूर्ण शहरों में होता है। तो प्रभुपाद जी ने ये उत्सव को बहुत महत्व दिया। भारत में भी अनेक स्थानों में रथ यात्रा होता है, आज के दिवस में ही दो तीन शहरों में, शायद बड़ौदा में, सूरत में और दो तीन और जगहों में ये रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें आध्यात्मिक क्रांति का एक अवसर मिल जाता है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों में आते हैं, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं और फिर बाद में प्रसाद लेने आते हैं, पंडाल में कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो कितना एक सुंदर प्रचार का भी एक वाहन बन गया है ये जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा करने के लिए एक अच्छा दिवस है। तो आज के दिवस हम भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और श्री सुभद्रा देवी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भी कि वो हमारे ऊपर कृपा बरसाएं ताकि हम सब शुद्ध भक्त बन जाएं। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। दो प्रणामे। हाँ जी नहीं, ले तो नहीं जा पाए। प्रश्न ये है कि जब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन ले जाना चाहते थे तो क्या वो सफल हुए? नहीं, सफल तो नहीं हुए, परंतु भाव ऐसा था, वो खींच के ले जाना चाहते थे, परंतु कृष्ण को तो वापस द्वारका जाना था। वृंदावन प्रकट लीला तो समाप्त हो गई थी, आश्वासन तो दिया था, लेकिन आप जानते हैं कृष्ण का आश्वासन कैसे होता है। लेकिन हाँ, हालांकि भागवत में ऐसे वर्णन नहीं है कि श्री कृष्ण, हाँ लेकिन आचार्य बताते हैं कि दंत वक्र का वध करने के बाद श्री कृष्ण एक बार चले गए थे वृंदावन। तो दंत वक्र का वर्णन करने के बाद में वो एक बार गए थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने उद्धव को भेजा था, बलराम जी भी गए थे। जी, सबको बोलो भेजते हैं। और कोई प्रश्न? जगन्नाथ बिल्कुल पास में दर्शन करें तो अपराध कैसे हो सकता है, कैसे होगा? नहीं, भाव ये है कि बिल्कुल पास में करने से वो एक भाव नहीं रहता है कि ये भगवान है। कभी कभी लोग हैं उसको स्पर्श भी कर लेते हैं या कुछ, बहुत ही एक समझ लीजिए जो भाव होना चाहिए भगवान के प्रति वो नहीं रहता। सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अगर वो थोड़ी दूरी पे अपने आप को नहीं रखता तो बहुत ही ज्यादा ही हो जाता, फिर वो दूसरों के मन में जो उसके प्रति वो भावना उसी नहीं रहती, तो भगवान के प्रति अगर बहुत ही ऐसे आना जाना रहेगा इस प्रकार के बहुत करीब से, तो भाव में नहीं रहेगी, हाँ चलो जा रहे आ रहे हैं। इसलिए विधि है शास्त्र में कि थोड़ा एक ऐश्वर्य भाव थोड़ा बहुत होना चाहिए कि हम हाँ, नहीं तो बहुत ही पास में आने से ये अपराध एक प्रकार का हो सकता है। हालांकि कई मंदिर हैं जैसे पंडरपुर है, वहां तो भगवान के बहुत करीब आने को देते हैं और भगवान को चरण कमलों का स्पर्श करने भी देते हैं, और जगन्नाथ मंदिर में भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है और फिर परिक्रमा प्रदक्षिणा करके हम आगे भी आ सकते हैं, परंतु तो महाप्रभु केवल गर्भ स्तंभ पे खड़े होकर ही दर्शन किया करते थे जगन्नाथ जी का। जैसे हमने कहा कि केवल जगन्नाथ जी को देख सकते थे गर्भ स्तंभ के ऊपर के पास में रह के, और बलराम सुभद्रा का दर्शन करने के थोड़ा इस तरफ आना पड़ता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन ही किया करते थे चैतन्य महाप्रभु गर्भ स्तंभ के ऊपर सवार होकर। ठीक है, बहुत हाँ हाँ, वृंदावन मंदिर में गरुड़ स्तंभ नहीं है, सही है नहीं। जब नहीं है तो मैं नहीं कह सकता ना कि है। गरुड़ जी चाहेंगे तो आएंगे कभी। ठीक है, हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। गोप्रमानंद
आपके